तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी मुझे आगे तेरे साथ बहना है जाना तुम्हें तो है ये बात जाने के जिंदगी कैसे बनती सुहानी मुझे हर पल तेरे साथ रहना है तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी ये दुनिया मिले ना मिले हमको खुशियाँ भगा देंगी हर गम को तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो मेरे लिए तुम काफी हो मेरे लिए तुम काफी हो मेरे लिए तुम काफी हो
चंद भट्टी का 20वां दिन। एक शिक्षक ने छोटी क्लास की बच्चों से पूछा, तुम्हें खिड़की से कितने तारे दिखते हैं? एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा 1,00,000। एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा 1,000। कोई और खड़ा हुआ, उसने कहा 100। एक छोटा सा लड़का पीछे बैठा था, उसको पूछा तुमको कितने दिखते हैं? उसने कहा 3। तो टीचर पूछता है कि तुम्हारे दोस्त और साथियों को इतने सारे तारे दिखते हैं आसमान में, तुमको 3 ही दिखते? कहते क्या करूँ, मेरी खिड़की बहुत छोटी है, हमारे घर की जो खिड़की है ना वो छोटी है। तो जब खिड़की छोटी होती है ना तो 3 ही दिखाई देते हैं, और जब खिड़की बड़ी हो जाती तो अनंत आकाश दिखाई देने लगता है। जब चेतना का द्वार बहुत छोटा है तो उसे कम दिखाई देने लगता है, और जैसे ही चेतना का द्वार विस्तीर्ण होते जाता है जो दिखाई देने लगता है वो कुछ और, जो चीज अब तक नहीं देख पाई थी वो अब दिखाई देने लगती थी। मुरली तो वही है जो 10 साल पहले पढ़ी थी, आज फिर वही पढ़ रहे, पर आज के पढ़ने में और तब के पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि अब उम्र ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है, जीवन के उतार चढ़ाव देख लिए, अध्यात्म की गहराई को थोड़ा सा हाथ लगाया है, स्पर्श किया है, योग थोड़ा बड़ा है, भटिया किए बीच में, चिंतन किया बीच में, ढेर सारी चीज़ें कर ली। इसलिए जैसे जैसे द्वार बड़ा होगा वैसे वैसे चीज़ें स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। चेतना के इस द्वार को बढ़ाना, बड़ा करना, इस अध्यात्म का लक्ष्य है। किसी और एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, अध्यात्म क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? गुरु ने कहा, अध्यात्म वो है जो तुम हर दिन अपने परिवर्तन में प्रयोग कर सको। तो वो कहता है, फिर ये जो पुराने जो लोग हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे या हमें जिन्होंने बातें सिखाई, क्या वो अध्यात्म नहीं है? वो कहता है वो अध्यात्म है, पर यदि उन्होंने जो कुछ तुमको सिखाया और जो कुछ किताबों में लिखा वो तुम्हें परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वो अध्यात्म नहीं है। तो कहते ये क्या कह रहे हो, इसका मतलब ये सारे शास्त्र गलत है, इसका मतलब उन्होंने जो ज्ञान सुनाया, जो अब तक हम ज्ञान सुन रहे थे, उस ज्ञान ने तो मुझे परिवर्तन किया ही नहीं, इसका मतलब वो गलत है। वो कहता है हाँ, वो ज्ञान नहीं है, वो केवल रिकॉर्ड है। कोर्ट के लिए शरीर को काटो मत, कोर्ट फिट हो जाए इसलिए, कोर्ट फिट हो जाए इसलिए शरीर को नहीं काटना है। हम वही कह रहे कर रहे, अध्यात्म तो सत्य है जो ज्ञान दिया हुआ है, पर वो हमें परिवर्तित नहीं कर रहा है। या तो हमारी समझ में दोष है या तो ज्ञान में दोष है, दो ही कारण हो सकते हैं। ज्ञान तो बहुत श्रेष्ठ है, निर्दोष, महान। सिद्धांत में कोई दोष नहीं है, व्यक्तियों में दोष है। और उस दोष का एक मुख्य कारण है आवाज। उस दोष का एक मुख्य कारण है आवाज। जब देवताएं पहली बार सृष्टि पर आए, अभी अभी उतरे, जस्ट अभी अभी, तो उनके संवाद का माध्यम क्या था? अभी अभी उतरे, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, एक साल, किससे कैसे बात करते थे? लक्ष्मी नारायण आपस में बैठ के कितना घंटा बात करते थे? रात भर। बताओ फिर, तुम्हारी राजधानी कैसी थी और मेरी राजधानी कैसी थी? बाबा कहते हैं दोनों अलग अलग राजधानी के थे। क्या बात करते थे? आपने कहाँ पढ़ाई की, कितनी पढ़ी लिखी हो, घर में कौन कौन है? जब देवता इस सृष्टि की शुरुआत मौन से हुई है, देवता अभी अभी धरती पर आए हैं, कैसे आए? वो ऊपर के संस्कार लेकर आए, ऊपर परम मौन है, उस परम मौन को लेकर नीचे आए हैं, और जैसे ही नीचे आए वो मौन में है। उनकी जो भाषा है उसे कहा जाता है NVC, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो मुख से नहीं बोलते, वो मौन से बोलते हैं। वो मुख से नहीं बोलते, वो आंखों से बोलते हैं। सोचो, आत्मा नीचे अभी अभी आई और बोलना चालू, डिस्कशन चालू, डिबेट चालू, लेक्चर चालू, वर्कशॉप सेमिनार चालू, हो ही नहीं सकता। कॉमन सेंस विवेक कहता है ये हो नहीं सकता। वो आते हैं तो मौन में, अर्थात मौन हमारा वास्तविक स्वभाव है, अर्थात मौन हमारा वास्तविक धर्म है, अर्थात मौन हमारा वास्तविक नेचर है, अर्थात मौन हमारी संस्कृति है। परंतु मौन का अर्थ ये नहीं कि केवल चुप रह जाना। मौन का अर्थ लोग गलत लगाते हैं। मौन खालीपन नहीं है, मौन अर्थात रिक्त हो जाना ये मौन नहीं है। मौन अर्थात भरना किसी और चीज से, जो इंद्रिय बाहर भाग रही है, आंखें जो बाहर देख रही है, कान जो बाहर सुन रहे, जिह्वा जो बाहर टेस्ट कर रही है, नाक जो सूंघ रहा है, हाथ जो स्पर्श कर रहा है। अब यही सारी इंद्रिय हमारी 10 इंद्रिय है, 5 जो बाहर भाग रही है, 5 जो अंदर भाग रही है। आंख जब अंदर के सौंदर्य को देखने लगा तब मौन है, कान जब अंदर के संगीत को सुनने लगे, आवाज को सुनने लगे, तो वो मौन है। नाक जो सूंघने लगे, किसको? सुगंध को, जो भीतर की महक है उसको। हाथ जो स्पर्श करने लगे उसको, जो अस्पर्शित है, जो अभी तक कभी छुआ नहीं गया उसको। हमने अपनी ही गहराई को नहीं छुआ है। मौन अर्थात अपने भीतर की अंतरतम की, अंतस की गहराई को स्पर्श करना। किया है नहीं किया है? तो आज की भट्टी का 18वां सूत्र है साउंडलेस साउंड, अर्थात आवाज रहित आवाज। संसार में मौन को क्या समझा जाता है? साउंडलेसनेस। ये है मौन, चुप हो जाओ, बोलना नहीं कुछ, नॉइसलेसनेस। ये वॉइस, ये साइलेंस गिना जाता है। पर साइलेंस ये नहीं है, साइलेंस तो कोई और एक आवाज है। साइलेंस आवाज का नाम है, साइलेंस उस संगीत का नाम है जो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से बजता है। हुई हाय नाम का एक संगीतज्ञ हुआ था कभी उधर चीन में, हुई हाय। वो जब अपनी संगीत की सर्वोच्च अवस्था में पहुंच गया, उसने अपना वो वाद्य फेंक दिया। अब जरूरत ही नहीं है। जब संगीतज्ञ अपनी सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है फिर उसे किसी वाद्य की आवश्यकता नहीं। जब कोई चित्रकार हाईएस्ट स्टेज में पहुंच जाता है तो वो पेंटर, पेंटिंग, चित्र, ड्राइंग सब फेंक देता है। जब वो निचली अवस्थाओं में रहता है उसे चित्र चाहिए, उसे तुलिका चाहिए, एक तुलिका चाहिए, एक ब्रश चाहिए, एक रंग चाहिए। तब तक जब वो नीचे की अवस्था में, जब वो उसकी सर्वोच्च अवस्था में पहुंचता है पराकाष्ठा, तब ये सब चीजें उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। जब एक धनुर्धर अपनी हाईएस्ट अवस्था में पहुंचता है तब उसे ना तो किसी धनुष की ना किसी बाण की आवश्यकता है, उसकी दृष्टि ही बाण का काम करती है। तब तो आज का हमारा सूत्र है 18वां अध्याय, 17वां अध्याय आज का मौन। मौन, अरे बराबर हम ये देख रहे थे। तो मौन का क्या किया जाए? मौन अर्थात भीतर का संगीत सुनना, मौन अर्थात भीतर की आवाज को सुनना, मौन अर्थात आंतरिक जो सुगंध है उसको सूंघना, मौन अर्थात अंदर कोई है, अंतरतम की गहराई, उसे स्पर्श करना। और मौन कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसलिए हमारा अगला सूत्र है द स्पेसलेस स्पेस अर्थात एकांत, स्थान रहित स्थान। एकांत अर्थात वो नहीं जहां कोई लोग नहीं है, एकांत अर्थात द स्पेसलेस स्पेस। स्थान तो है परंतु कोई स्थान नहीं है, स्थान रहित स्थान। और ये भी तब आएगा जब तीसरा सूत्र होगा द बॉटमलेस बॉटम, कौन सी गहराई जिसकी कोई गहराई नहीं है अर्थात अंतर्मुक्ता। तो ये एक त्रिकोण है, कौन सा? मौन का, एकांत का और अंतर्मुक्ता का। बिना इन तीन के अध्यात्म में उन्नति हो ही नहीं सकती। हमारी यात्रा है रिटर्न जर्नी, आज बाबा ने कहा रिटर्न शब्द का प्रयोग किया। एक तो रिटर्न दो, रिटर्न चलो, लगभग 50 अर्थ निकाले जा सकते एक शब्द के, रिटर्न एक ही शब्द के 50 अर्थ अलग अलग रीति से। तो आज इस पर सभी चिंतन करेंगे, एक ही शब्द पर रिटर्न शब्द के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, किस ओर रिटर्न करना है। अपने उन संस्कारों की ओर रिटर्न होना है जो सतयुगी थे, अपने उन संस्कारों की ओर रिटर्न करना है जो आने वाले हैं, जो फरिश्तों के संस्कार है। और फरिश्ते हमारे पांचों ही स्वरूप जो है वो मौन के है। सबसे पहला परम धाम में आत्मा मौन है, सतयुग में आ गई आत्मा मौन है सतयुग में। हाँ मैं भी त्रेता में थोड़ा बोलना चालू किया होगा उसने, सतयुग की भाषा मौन भाषा है, बोलते भी होंगे तो बहुत कम, बहुत थोड़ा अर्थ सहित, थोड़ा सा ज्यादा बोलने क्या, बोलकर किसी को ऑर्डर देना है क्या, किसी को कुछ बताना है कि भाई ये झाड़ू लगा दो, लक्ष्मी कहे कि तुम क्यों नहीं आए आज झाड़ू लगाने, कल क्यों नहीं आई थी, कुछ बोलने की किसी को आवश्यकता है? झगड़े की भाषा नहीं है। हम बोलते क्या है, बोलने के कारण क्या क्या है, किसी को बात करने के लिए, अपनी मन की भावना बताने के लिए। अब वहां तो मन की भावना वैसे ही समझ में आ जाती है, वायरलेस है, किसी को कुछ बताने की थोड़ी ना आवश्यकता है, किसी को कोई ऑर्डर नहीं देना है, कोई सजेशन नहीं देना है। वहां पर बाबा कहते हैं मंत्री नहीं होंगे, कोई मंत्रणा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है, किसी को कुछ चाहिए, अब सभी भरपूर है, सभी विश्व के मालिक है, कोई आवाज लेबर ये है कि वहां पर एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो, कोई यूनियन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां मौन है। इस विषय में हमने शायद कभी सोचा ही नहीं कि सतयुग की भाषा क्या होगी। वहां की भाषा है साइलेंस, वहां की भाषा है द साउंडलेस साउंड। बोलना भी पड़े तो एक हाथ शब्द और बहुत ही अर्थ सहित शब्द होगा, एक ही शब्द, एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, डबल मीनिंग नहीं होंगे, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे अभी के जैसे। एक लाइन दो लाइन दादी गुलजार को ही ले लो, पिछले 3-4 साल से कितने शब्द बोले होंगे, और सारा जीवन ही ले लो, एक लंबी दास्ता है मौन की, एक पोयम है, एक प्रेयर है उनका जीवन मौन का। तो हमारा वास्तविक स्वभाव मौन है। मौन से क्या होता है? मौन से हम लौट चलते हैं अपने ओरिजिनल स्वरूप की तरफ। मौन से क्या होता है? मौन से विश्राम प्राप्त होता है चेतना को, क्योंकि हमारी ऊर्जा कहाँ नष्ट हो रही है? बोलने में और खाने में। जब तक चेतना मौन की तरफ नहीं लौटती, उसकी ऊर्जा फिर से वापस नहीं आती। अगला, मौन की अवस्था में ही उपचार होता है, हीलिंग होती है। जब तक मौन नहीं तब तक हीलिंग नहीं, क्योंकि आत्मा में इतने सारे साइकोलॉजिकल वुंड है, मनोवैज्ञानिक घाव है उसके ऊपर, किस किस जन्म ने किस किस ने हर्ट किया है उसको, आत्मा दुखी है अंदर से, हर्ट हुई है, वो हृदय है ना, वो देखो उधर खून बह रहा है, वहां से मरम पट्टी से कुछ काम नहीं हो रहा है, उसके लिए साइलेंस चाहिए। उसके बाद में हमारा कनेक्शन कहाँ है? हम बिखरे हुए लोग हैं, खंड खंड बटे हुए लोग हैं, किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, खाली दिखावा ऊपर से है। क्यों भाई, कैसे हो, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ चाहिए क्या? ये कहना एक झूठा दिलासा है, हम झूठ खंड में रह रहे हैं, स्वार्थ, सब स्वार्थ जनित है, इसलिए हम डिसकनेक्टेड है। अगर हमको अपने आप से, अपने लोगों से रियल कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, बैठ जाओ एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चुपचाप मौन में, दो दोस्त, दो मित्र, पति पत्नी, भाई बहन, कोई भी, तब समझ में आएगा कि रियल कनेक्शन क्या है। तब तक नहीं समझ में आता है। अब तक जिसको हम कनेक्शन कह रहे हैं वो कनेक्शन है ही नहीं, वो झूठ है, मिथ्या है। तो मौन कहाँ ले जाएगा हमको? रियल कनेक्शन की तरफ। प्रकृति से कनेक्ट होने का साधन क्या है? मौन। अपने आप से कनेक्ट होने का साधन क्या है? मौन। परमात्मा से कनेक्ट होने का साधन क्या है? मौन। वो कहाँ रहता है? वहाँ कोई आवाज़ है? कोई आवाज़ नहीं है वहाँ, वो स्वयं मौन का सागर है, साइलेंस का सागर है। उससे कनेक्शन करना है, कैसे हो सकता है बिना मौन के? बाप समान, बाप कहाँ है? अव्यक्त है, अव्यक्त अर्थात मौन। आज की सारी मुरली, बाप समान बनो, समान बन के दिखाओ, वो मौन है, वो अव्यक्त है, वो अभोक्ता है, वो चुप है, यही। और मौन सबसे बड़ी शक्ति है संसार की, सबसे बड़ी पावर है संसार की। इसलिए जितने योगी, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा, अवतार थे, वो बीच बीच में कहाँ चले जाते थे? मौन में चले जाते थे। जीसस क्राइस्ट बीच बीच में मौन, संत तुकाराम कहाँ चले जाते थे? मौन में चले जाते थे बीच बीच में, वृक्षवल्ली आम्हा सोए रे, एकदम उसकी पत्नी ढूंढने आती थी, फिर कहाँ गए कहाँ गए, उसको लगता था ये मुझसे नाराज होके आ गए, ये उसकी अपनी सोच थी, पर मनुष्य से कहाँ नाराजगी। ये वो चेतनाएं थी कि जो एकदम अनंत आकाश में रहती थी, उसके भी ऊपर, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहती थी ये लोग, ये आत्माएं। संत ज्ञानेश्वर बीच बीच में मौन, क्यों मौन? और ये लोगों का कनेक्शन साधारण जनों से नहीं था, वो मौन के तल पर इंटरेक्ट करते थे। वो जो बातें करते थे, जितने कवि है, नेचर पोएट्स, उनकी सारी कविताएं पढ़ो, तो उनके लिए पक्षी एक व्यक्ति है जिससे वो बात कर रहे हैं। क्या उनको कमी थी क्या दोस्तों की? प्रसिद्ध थे सारे, किताबें पब्लिश हो चुकी थी उनकी, नाम था उनका, फिर भी उन सब से, विलियम वर्ड्सवर्थ एकांत, कालिदास एकांत, तुलसीदास एकांत, सूरदास एकांत, मीरा, अब हम उसकी इतनी महिमा करते, तब तो लोग उसे बहुत कम जानते थे, वो तो उसके जाने के बाद उसकी प्रसिद्धि हुई। शी लिव्ड एन अननोन लाइफ, एकांत। वो नहीं चाहते थे कि कोई हमको जाने, तो आत्मा का तो मूल धर्म ही मौन है, आत्मा की मूल संस्कृति ही मौन है। और मौन के लिए क्या चाहिए? एकांत। एकांत अर्थात स्थान, एकांत अर्थात कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा स्पेस जहां पे हमारे अतिरिक्त और कोई भी ना हो, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पर आह्वान करते हैं लोग परमात्मा शक्तियों का। यहां तक ये तंत्र विद्या करने वाले भी कहां रहते हैं? भीड़भाड़ में रहते हैं क्या? क्यों? क्योंकि मौन में ताकत है। वो जो तंत्र विद्या से आह्वान करते आसुरी शक्तियों का, वो भी कहां करते हैं? मौन में, एकांत में। उनकी भी अपनी साधना होती है, अगर वो साधना भंग हो गई तो वो कुछ नहीं कर सकते, पावरलेस हो जाते वो। जैसे आसुरी शक्तियां मौन में बढ़ती है, वैसे ईश्वरीय शक्तियों भी मौन में ही आगे बढ़ती है। जितने योगी जन हुए, मोजेस 40 दिन तक मोजेस मौन में चले गए, 40 डेज फास्टिंग 40 डेज साइलेंस। क्यों? 40 दिन मौन 40 दिन उपवास किस लिए? हमको 40 मिनट बाबा के कमरे में बैठने में मेहनत लगती है, ये लोग 40 दिन तक खाली प्रेयर्स। क्रिश्चियन जितनी सेंट्स नंस हुए हैं, यहां पर ही ले लो माउंट की, बीच बीच में ये साइलेंस में चले जाते। हम पूछते हैं, अरे वो सिस्टर आई नहीं, क्या हो गया? तो पता चलता है, नो दैट सिस्टर इज इन साइलेंस। वो सिस्टर साइलेंस में क्या करते? साइलेंस में बाइबल पढ़ते, प्रेयर करते, फास्ट रखते। क्या करते साइलेंस में? जीसस क्राइस्ट से डीप कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि ईसा मसीह ने हमारे लिए इतना सफर किया, इतना दुख उठाया, सूली पर चढ़ गया, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? हमें कुछ करना है उसके लिए, मतलब हमारी भाषा में रिटर्न देना है। बाबा कहते ना रिटर्न दो। वैसे यहां पर एक साध्वी थे अभी, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो कई सालों तक हमारे पास आते रहे वो। तो वो साध्वी तो ऐसे थे, इतने योगी थे, कई बार एडमिट भी किया उनको। तो कई बार हम पूछते थे वो कहां गए, आए नहीं, तो उनकी शिष्या जो थी वो आती थी पेपर लेके कि दवाइयां लिखवा दो। हम कहते थे वो क्यों नहीं आए? वो कहते नहीं, वो तो अभी साधना में बैठे हैं, कैसे आएंगे? हम कहते थे कितने दिन की साधना है? 40 दिन की साधना है। तो हम पूछते किससे भी बात नहीं करते, बोलते सवाल ही नहीं है। क्या करता है ये सब? शक्ति भर देता है आत्मा में। यहां तक कि कोई बड़ा साहित्य लिखना हो तो लोग क्या करते? साइलेंस में चले जाते। डॉक्टरेट करते, साइलेंस में चले जाते। संत ज्ञानेश्वर दिखाया है गीता पर जो कमेंट्री लिखी ज्ञानेश्वरी, ये मराठी चिया नगरी ब्रह्म विद्येसा सुगाड़ करी। वो आह्वान करते उस किसका, वो परम प्राइमल एनर्जी जो है उसका आह्वान कर रहे हैं कि हे ब्रह्म ज्ञान, हे परम ज्ञान जो है, तू आ जा। कहाँ आ जा? मराठी की इस नगरी में प्रवेश कर। क्योंकि उनको ट्रांसलेट करना है प्राकृत भाषा में, जो लोगों को समझ में आए, संस्कृत लोगों को समझ में नहीं आती है। तो उन्होंने ऐसी कितने ट्रांसलेशंस हुए गीता के, ये एक मराठी ट्रांसलेशन है गीता का। ये मराठी चिये नगरी ब्रह्म विद्ये सा सुकाड़ करी, घेने देने तुझसी वरी ओ देही या जगा। वो आह्वान कर रहे हैं, वो परम ज्ञान का आह्वान कि हे ज्ञान, तू प्रकट हो इस भाषा की नगरी में। मैं नहीं लिख रहा हूं, तू आ इस भाषा की नगरी में आ, ताकि संसार का कल्याण हो सके। भाषा का आह्वान करना। तुलसीदास को क्या भाषा आती थी क्या? आह्वान किया। वो रामायण किस में लिखी है? संस्कृत में। लोगों को समझ में नहीं आती है। इन्होंने किस में लिखी? अवध अवधि, उधर की भाषा में। क्यों? लोगों को समझ में आए। आह्वान किया भाषा का। तो भाषा का आह्वान किस में किया जाता है? मौन में, साइलेंस में। ये सारे कार्य साइलेंस में। इसके लिए चाहिए एकांत और उसके लिए चाहिए अंतर्मुखता। तो आज के हमारे ये 3 सूत्र है, मौन, एकांत और अंतर्मुखता। हम हमेशा उदाहरण देते हैं महात्मा गांधी का, विदेश में गए थे, रहे थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक जगह गए, एक मठ में देखने के लिए क्या चलता है। उस मठ का नाम था ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। तो वहाँ मठ के अंदर प्रवेश किया, देखा यहाँ सभी मौन धारण किए हुए। मठाध्यक्ष से मिले, पूछा ये है क्या, यहाँ कोई बोलता नहीं क्या? तो मठाध्यक्ष ने कहा कि नहीं, यहाँ पे नियम है इस मठ का, जब तक आपको इस मठ में रहना है तब तक मौन में रहना है। महात्मा गांधी पूछते आखिर क्यों? क्योंकि ये उनका प्रारंभिक, अभी वो पूरे अध्यात्म में मुड़े नहीं है, वो अभी तो कुछ जीवन में वो क्रांति हुई नहीं है, अभी अभी पहुंचे हैं साउथ अफ्रीका में अपनी प्रैक्टिस के लिए, डिग्री लेके और वो सब करके, अभी तो उनको वो ट्रेन से ढकेला भी नहीं है जहाँ से फिर क्रांति चालू हुई, अभी ये उसके पहले का पीरियड है। तो वो कहता है कि आप ऐसा क्यों करते हो आखिर? तो वो कहता है, ओ मठाध्यक्ष, वी ह्यूमन बींग्स आर सो फीबल, वी रियली डू नॉट नो व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। हम मनुष्य इतने कमजोर है, हमें इतनी भी तो बुद्धि नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बेटर है कि कुछ बोले ही नहीं। क्योंकि जब भी बोलने जाते हैं तो क्या होते, किसी को हर्ट करते हैं, जब भी बोलने जाते सत्य के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जब भी बोलने जाते क्या करते, सत्य का दमन करते हैं, जब भी बोलने जाते उसको अतिशयोक्ति करते हैं उसके, ये तीन काम करते हैं हम सत्य के साथ। क्या क्या? एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति, बात इतनी सी बड़ा चढ़ा कर बताते। दूसरा उसका दमन करते, उसको बताएंगे नहीं दूसरों को, सप्रेस कर देते उसको, या तो उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं थोड़ी सी, अपनी सुविधा के अनुसार सत्य बोलते। मैनिपुलेशन, टेम्परिंग विद ट्रुथ, छेड़छाड़ करना सत्य के साथ, ये तीन हमारे बहुत बड़े दोष है। अगर हम अपने आप का पूरे दिन का रिकॉर्ड चेक करें, फोन आया किसी का, हेलो, हम कहते हम बिजी है हम बिजी नहीं है, क्या किया? सत्य के साथ छेड़छाड़ की, या तो सत्य का दमन करते या तो अतिशयोक्ति करते, ये निरंतर चालू ही चालू है। इसीलिए साइलेंस इज नेसेसरी, वो मठाध्यक्ष महात्मा गांधी को ये बताते। इसलिए उनके जीवन में हर सोमवार मौन, पूरा जीवन भर, जो रख सके वो हर हफ्ते में एक दिन कंप्लीट मौन रखना है। अब आते हैं इस मौन को और एकांत को और इस अंतर्मुखता को व्यस्त ब्राह्मण जीवन में धारण कैसे करें। कम से कम पांच विधियां हैं। सबसे पहली, इंटरमिटेंट साइलेंस। ये क्या है? इंटरमिटेंट अर्थात बीच बीच में, और साइलेंस अर्थात केवल चुप हो जाना साइलेंस नहीं है, अंदर एकदम खालीपन वो साइलेंस नहीं है, या फिर कोई समान रिपीट करना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं ये भी साइलेंस नहीं है, या अभी ये सोचना मैं परमधाम में चला जा रहा हूं, इसमें भी तो शब्द है। जो हमने यहाँ क्लास कराई थी या जो सूत्र देखा था सेल्फ रिमेम्बरिंग, उसमें क्या था? फील करना, फील करना है साइलेंस को, कुछ भी बोलना नहीं है, ना अंदर बोलना है ना बाहर बोलना है, अंदर भी नहीं बोलना है, रिपीट भी नहीं करना है, केवल फील करना है। तो अभी अभी एक मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठेंगे, अंदर ना तो कोई संकल्प हो ना कोई समान हो, कुछ भी ना हो, केवल फोकस कर दो ये आत्मा और ये कैसी है, फील करो, इस साइलेंस को फील करना है, बोलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि बोलते ही साइलेंस तो भंग हो गया ना। ये बोलना भी कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, साइलेंस को तो तोड़ दिया आपने, उल्लंघन हो गया। ये सोचना भी कि मैं परमधाम निवासी हूं, साइलेंस तो पहले ही टूट गया, मैं उस साइलेंस के सागर की संतान हूं, साइलेंस टूट गया। कुछ भी ना अंतर से, ना मुख से बोलना है ना मन से बोलना है, केवल फील करना है साइलेंस को, यहां आत्मा है, साइलेंट है, स्टार्ट। आवाज सुनो साइलेंस की, फील करेंगे उस साइलेंस को। संगीत सुनेंगे मौन का। सुगंध लेंगे मौन की। टच करेंगे साइलेंस को। ओम शांति। तो सारी दिनचर्या में जैसे ही एक मिनट मिल गया, क्या करना है? आंखें बंद और साइलेंट। एक मिनट मिल गया, आंखें बंद साइलेंट। बीच बीच में मुरली क्लास में बैठे, बीच बीच में एकदम ही साइलेंट हो जाओ। यह है इंटरमिटेंट साइलेंट। दूसरा है पोस्ट सेवा साइलेंस। सेवा पूरी हुई, सेवा में बोलना पड़ा, बहुत बोला, बोल दिया, बोलना ही पड़ता है। कोई कहे कि मैं सेवा में मौन हूं तो डिससर्विस हो जाए। बहुत समय पहले, बहुत पहले, जब हम एक बार यहाँ थे हॉस्पिटल में, एक डॉक्टर आई थी बीके, तो वो ड्यूटी पीरियड में साइलेंस रखती थी। बड़ा खतरनाक साइलेंस था। ड्यूटी डॉक्टर, जो रेसिडेंट डॉक्टर थी, तो सिस्टर बोलती थी, डॉक्टर जल्दी चलो, पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है। वो कहती थी, चुप, साइलेंस, और बैठी रहती थी। खतरनाक साइलेंस था वो। साक्षी, सेवा छोड़ के साक्षी हो जाना। सेवा जहां जरूरत है वहां। आज की मुरली में बाबा का उदाहरण, बाबा इस तरह से कभी साक्षी नहीं हुए जब सेवा करनी है। साथ रह के सिखाया, बुजुर्ग से बुजुर्ग, बच्चे से बच्चा, युवा से युवा। ये ब्रह्मा की स्टेज है। जो ना उम्मीदवार है उसको उम्मीद दी, जो निर्बल है उसमें शक्ति भरी, पावर दी उसको, उसको उड़ाया, उड़ती कला में ले गए उसको। मधुर बोल, युक्तियुक्त बोल थे। सबसे बड़ा ये क्या है पता है? ब्राह्मण जीवन का एक गुण जो जिससे दिखाई देता है ये व्यक्ति पुरुषार्थी है कि नहीं है। सीधा सीधा इस एक शब्द, इस एक बात से पता चल जाएगा कि ये पुरुषार्थ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या यथार्थ कर रहा है कि नहीं, उसके शब्द। एक व्यक्ति दूसरे पर कमेंट करता है, यही क्लियर हो गया कि वो श्रीमद पर है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा क्या कह रहा है? ब्रह्मा जो ना उम्मीदवार है उसको उम्मीदवार, होपलेस को होपलेस, होपफुल बना रहा है। ब्रह्मा क्या कर रहा है? जो निर्बल है उसमें शक्ति भर रहा है। और तुम किसी पर कमेंट कर रहे हो, अर्थात तुम्हारा अभी तक का 30 साल या 40 साल का जो भी योगी जीवन होगा, जीरो जीरो। इससे पता चल रहा है, चलो तुम ये कह रहे हो कि ये पुरुषार्थ नहीं करता है, पर यह अधिकार तुमको दिया किसने? तुम्हारे इस एक शब्द ने प्रूव कर दिया कि 40 साल का सारा जीवन का जो पुरुषार्थ है जीरो था, क्योंकि बोल ही सब कुछ रिवील कर देता है। वो तो फिर भी पता नहीं चलता है अंदर क्या चल रहा है, पर जो बोल में निकल रहा है अर्थात फेल। अगर हमने किसी को हर्ट कर दिया, सबके सामने किसी का अपमान कर दिया, भले वो व्यक्ति बहुत बड़ा पुरुषार्थी है, तपस्वी है, परंतु शब्द ये निकल रहे अर्थात फेल। वो हम सोचे वो अलग, पर हम ये जो बात कह रहे हैं ये भी उस रीति से राइट है। वो तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है अगर कोई करे तो, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जीवन में होना तो वरदान है, क्योंकि यही लोग हमें अलर्ट रखते हैं। बिना इनके हुए तो हम तो सो जाएंगे। ये तो सबसे बड़े शिक्षक है उनका, तो ये हमारे जीवन में शिव बाबा का खास दिया हुआ वरदान है। हाँ, फ्री। इनके सिवा तो हमारी उन्नति ही नहीं हो, अगर ये चले गए तो हमारी उन्नति खतरे में है। हाँ। तो दूसरा है पोस्ट सेवा। तो सेवा में तो करना है, जितना बोलना है बोलते रहना है, पर उसमें भी लिमिटेड। पर जैसे ही सेवा पूरी हो गई, अब तुमको बोलने का कोई काम नहीं है। ड्यूटी किसी की 5 बजे तक है, 6 बजे तक है, 6 बज गया, बस हो गया, खत्म, स्टॉप ना। नाउ एंटर इनटू साइलेंस, पूरा साइलेंस में घुस जाओ, अंतर्मुक्ता की गुफा में चले जाओ। तीसरा मौन है चिंतन का मौन। बिना मौन के चिंतन नहीं हो सकता है, और हर दिन अगर हमको मुरली अच्छे से चिंतन करनी है तो मौन चाहिए, अच्छे से चिंतन के लिए, गहराई से चिंतन के लिए। एक एक शब्द जैसे रुक जाए, जैसे 3-4 दिन पहले मुरली में एक शब्द था, सफाई हो जाए आत्मा की, जैसे ठहर जाए मुरली में एक शब्द, ऐसे बीच बीच में ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, ये यज्ञ अंतिम है, ठहर जाए शब्द, इस यज्ञ में सारा, इस यज्ञ से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होगी, ठहर जाए शब्द। रुद्र और शिव एक ही है, ठहर जाए शब्द। शिव के शरीर का कोई नाम नहीं है, ठहर जाए ये वाक्य उसकी आत्मा का नाम है। कितने अलग अलग वाक्य है, लाइन लाइन, एक एक मुरली का शब्द शब्द जो है वहां बुद्धि ठहरे। एक मुरली को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए साकार? एक टाइम का भोजन करने के लिए 1 घंटा बताया है, तो मुरली का पढ़ने के लिए कितना लगना चाहिए फिर? 1 सप्ताह भी कम है। एक ही लाइन पढ़ो और रुक जाओ, एक ही लाइन पढ़ो और रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सिप सिप, थोड़ा सा पियो, रुक जाओ, थोड़ा सा पढ़ने का। और मुरली जो है ना, दिन भर में पढ़ते रहने की, थोड़ी थोड़ी, टुकड़े टुकड़ों में, खंड खंड, किश्तों किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में, थोड़ी सी पढ़ ली सुबह, छोड़ देना, ताकि फिर बुद्धि में रहता है पढ़ना बाकी है। एक बार पूरा 10 मिनट पढ़ लिया, काम पूरा हुआ, अब तो निश्चिंत है, हाथ ही नहीं लगाना है अब उसको, क्योंकि काम तो पूरा हो गया ना, तो माइंड आदेश देता है हो गया, इसलिए वैसा नहीं करना है। डायरी में भी लिख दिया, मुरली सुन भी ली, सारा चार्ट फुल है, अभी चार्ट लिखने बोलो तो यस 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 100% मार्क्स दे देंगे अपने आप को, पर याद कुछ भी नहीं है, उसका क्या मतलब है? एक तीन लाइन पढ़ के रुक जाओ, 1 2 3, या तो केवल स्लोगन पढ़ लो, या तो केवल वरदान पढ़ लो और रुको, 1 घंटा दो अपने आप को पचाने के लिए। बाबा ने कहा वो भोजन जो केवल खाते हो पेट की भूख भरेगा, क्योंकि हजम तो किया ही नहीं, केवल पेट की भूख भरेगा, वो शक्ति नहीं बनेगा, वो केवल भूख दूर होगी उससे, अव्यक्त महावाक्य बाबा के, ताकत नहीं बनेगी, खून नहीं बनेगा वो। तो पोस्ट, सेवा, मौन और ये चिंतन का मौन है। चौथा है योग का मौन। योग में मौन, योग में कितनी आवाजें होती है मन के अंदर, चैटर चालू ही है, कंटिन्यूस बोलना चालू ही है, इतने बोल इतने बोल इतने बोल की आवश्यकता है क्या? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत, मैं तुम प्रेम के सागर हो, तुम ये बाप टीचर सद, ये योग है कि क्या है? भीड़ शोरगुल, कितना शब्दों का शोरगुल है, उसमें भी किसी और की कॉमेंट्रीज लगा के बैठे, पहले अपने दिमाग की शोरगुल और ये दूसरा एक्स्ट्रा शोरगुल। हाँ ये किस तरह का योग है? योग अर्थात शब्द रहित, आप शब्दों से पार जा रहे हो, और शब्दों से पार जाने की विधि है शब्दों से चालू करना है, शब्दों का आधार लेना है और शब्दों को छोड़ते जाना है। जैसे महात्मा बुद्ध गुजर रहे, उधर से देखा 5 लोग आ रहे नाव सिर पे पकड़े हुए, आश्चर्य लगा ये लोग चल रहे सिर पे नाव पकड़े हुए। वो कहता है क्यों? वो कहता है कि इस नाव ने हमें उस नदिया से पार कराया, तो कितना उपकार इस नाव का, ऐसे कैसे छोड़ दे उसको, इसलिए सिर पर ले जा रहे। कितना उपकार इन शब्दों का, कितना उपकार इस कमेंट्री का। कमेंट्री सुनना है ना तो भोजन बनाते बनाते सुनो, कमेंट्री लगा दो ताकि वो शब्दों की जो थियरी है वो याद हो जाए, और फिर जब योग करो तो कोई कमेंट्री कान में जरूरत नहीं है, फिर उसको याद करते करते कमेंट्री करो, फिर उसका अनुभव। योग अनुभव के लिए, ना कि शब्दों के शोरगुल के लिए। इतने शब्द, ये क्या योग है? या बाजार, मंडी, ये योग नहीं है। योग अर्थात शब्दों का आधार थोड़ा थोड़ा लेना है, और जैसे जैसे योग गहरा हो जाए शब्दों को छोड़ते जाना है, फिर सीधा एकमात्र योग है परम धाम का योग, बस, जो हमारा घर है जहां हम रहते हैं वो योग। उसके बाद में है प्रकृति का मौन। प्रकृति की आवाज को सुनो, प्रकृति के संगीत को सुनो, प्रकृति की महक को सुनो। एक एक फूल के साथ पास में जाके बैठो, ये फूल मुझसे क्या कह रहा है। एक है मैं फूल को देख रहा हूं, एक दूसरा योग का प्रयोग है फूल मुझे देख रहा है। एक है नदी मैं नदी को देख रहा हूं, दूसरा है नदी मुझे देख रही है। एक है मैं नक्की झील को देख रहा हूं, दूसरा है नक्की मुझे देख रही है। एक है मैं अनादरा से नीचे देख रहा हूं, एक है नीचे का जो जमीन है वो मुझे देख रही है। ऐसी
क्या कर रहे हो?
ठीक ठाक है ना? एक है मैं बाबा को देख रहा हूं, एक है बाबा मुझे देख रहा है। हाँ ये तो ये सोचना है कि सामने का व्यक्ति मुझे, एक है आईने में मैं अपने आप को देखूं, एक दूसरा मिरर मेडिटेशन है, मिरर की जो इमेज है वो मुझे देख रही है। मिरर मेडिटेशन जैसे हमने एक बार भी कहा था दादी जान की, तो दादी जान की एक बार उठे फिर चलने लगे, तो दादी का क्लास था, सब लोग कह रहे दादी जल्दी चलो जल्दी चलो, तो दादी आईने के सामने आ गई और खड़ी हो गई। तो हम भी देख रहे, सब लोग देख रहे, हमने कहा दादी किसको देख रहे? दादी कह रही हूँ दृष्टि ले रही हूँ। किससे? अपने आप से। कमाल है, नया योग का प्रयोग निकला ये तो, अपने आप से ही दृष्टि ले रहे योग क्लास कराने जाने से पहले। आज कहा ना तुम कौन हो? हाइएस्ट डायरेक्ट रचता उसकी फर्स्ट रचना हो तुम, कोई साधारण नहीं हो, पार्टी नंबर एक चोटी हो तुम, ब्राह्मण सर्वोच्च हो, जैसा वो वैसे तुम, अपने आप को छोटा नहीं समझो। तो ये पांच विधियां है, किसकी? मौन की, एकांत की और अंतर्मुखता की। जितना हो सके मौन में चले जाओ, जब भी समय मिले अंतर्मुखी हो जाओ। काम पूरा हुआ, सेवा पूरी हुई, यहां लॉक कर दो, डबल लॉक। फिल दो इसको, इसका कुछ काम ही नहीं है। जैसे काम पूरा हुआ, क्लास कराया, लेक्चर दिया, खत्म, किससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपने मार्ग पे, हम अपने मार्ग, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, किससे कोई मतलब नहीं है। सेवा पूरी हुई, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बिल्कुल मौन, चुप। क्योंकि मौन में ही हम अपने आप को स्पर्श कर, हम अपनी गहराइयों को हमने स्पर्श ही नहीं किया है। कि किया है? नहीं किया है। हमने अपने आप को ही कहाँ जाना है? अपनी गहराई के अंदर जाना है, अपनी ही आत्मा में कौन से भय छिपे हुए, कौन सी कॉम्प्लेक्सेस छिपे हुए, कौन सी गांठें हैं, हमें इन गांठों को खोलना है। इतनी गहरी गहरी गांठें हैं, इतने गहरे गहरे अभिमान और अहंकार से भरे लोग हैं हम। हम जैसे ब्राह्मणों जैसे अहंकारी तो हमने आज तक अपने जीवन में कहीं नहीं देखे। जितना अहंकार ब्राह्मणों में है, जिसको वो स्वयं को स्वमान कहते हैं, वो स्वमान नहीं अहंकार है। बाहर के ये जो बाहर के लोग फिर भी कितने निरंकारी रहते हैं। हमने स्वमान घमंड अहंकार सबको, और निमित्त हूँ का भी अहंकार, मैं ही निमित्त हूँ, तुम थोड़ी निमित्त हो, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, निमित्त का भी। ऐसे घमंडी लोग धरती पर बहुत कम है। पर चलो, हमें अपना अहंकार इसलिए नहीं कह रहे, हमें अपना अहंकार खुद ढूंढना है। अहंकार को मिटाने की यात्रा है, जो ब्रह्मा ने 33 साल लगा दिया अपना पूरा अहंकार मिटाने के लिए, उसको 33 ईयर्स लगे, संपूर्ण निराकारी निर्विकारी निरंकारी। हमको कितने लगेंगे पता नहीं, हम सबको, उसको 33 ईयर्स, वो भी आदि पुरुष, प्रथम पुरुष, फर्स्ट मैन, उसको इतने टाइम लगा, 33। हमें कितने लगेंगे? उनके सामने कोई एग्जाम्पल, कोई किताबें नहीं थी कि वो पढ़े, कोई अव्यक्त मुरलियां नहीं थी उसके सामने, कोई खाली साकार मुरलियां थी, उसमें वही सारी बातें, घर जाना है वगैरह वगैरह। हमारे सामने गहरी साइकोलॉजी जिसमें डेप्थ है, वो अव्यक्त मूल्य, फिर भी हम बन नहीं पा रहे। उनके पास कोई इंटरनेट नहीं था कि ये टॉपिक के बारे में एक मिनट में सारे मूल्यों की पॉइंट्स आ जाती है हमारे सामने। उनके सामने कोई इंटरनेट नहीं था, कोई गूगल नहीं था, फिर भी उन्होंने को 33 ईयर्स लगे। हमारे पास सब है, फिर भी हमारी स्थिति वैसी नहीं है। ये सारे ज्ञान ने हमको अहंकार के अतिरिक्त और किसी से नहीं भरा है। अहंकार गूगलाचार्य, हमको इतना अहंकार किस बात का है समझ नहीं आता है। कई बार छोटी छोटी बातों का अहंकार है, अपने भोजन का अहंकार, अपने कपड़ों का अहंकार, अपनी पवित्रता का अहंकार, अपने पांडव भवन में रहने का अहंकार, अपने सेंटर में रहने का, अपने सफेद कपड़ों का अहंकार, अपने बैच का अहंकार, अपनी दिनचर्या का अहंकार, अपने अमृत वेले का अहंकार, अपने पुरुषार्थ का अहंकार, अपने इंचार्ज होने का अहंकार, अपने सेवाधारी होने का अहंकार, अहंकार का अहंकार, हर चीज का अहंकार, अपने प्रोफेशन का अहंकार, किस चीज का अहंकार नहीं है बताओ? एक बात बताओ जिसका हमें अहंकार नहीं है। बालों का हर चीज, एक बात नहीं है हमारी जिसका वजह से हमें अहंकार नहीं है। हमें अपने आप को इन सभी अहंकार से की परते जो है अपने आप को जानना है, और विधि केवल जान लेना है। जानेंगे तो धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। एक है अहंकार होना और व्यक्ति को पता ही नहीं, दूसरा है जैसे हमें पता है हमें बहुत अहंकार है कुछ चीज़ों का, पर मुझे पता है और अहंकार मुझे है और मैं कोशिश कर रहा हूँ उससे मुक्त हो। जैसे एडिक्शन से मुक्त होना कठिन है, वैसे ये इससे मुक्त होना महाकठिन है। कैसे वो अभी रग रग में भर गया है, कहाँ से, जैसे मेडिकल प्रोफेशन का अहंकार रहता ही है, कैसे उससे मुक्त हो, वो ब्लड में है। कैसे भूले कोई मैं डॉक्टर हूं, कैसे भूले कोई मैं इंजीनियर हूं। आज की मुरली में राजकुमारी का उदाहरण दिया है, उसके पता चलता है उसके इससे चलन से। शायद अहंकार को निकाल दे तो शायद कभी डर लगता है मेरा अस्तित्व ही गिर ना जाए, मैं खत्म ही ना हो जाऊं, इसलिए तो छोड़ते नहीं हूं कि मैं जीरो हो जाऊं, ये डर है। क्योंकि अहंकार ही मिटा दिया तो लोग तो फायदा उठाने चालू करेंगे। ये अहंकार ने जैसे हमको बचा के रखा है, इसलिए हमने उसको पकड़ा है। तो आज का सूत्र मौन, एकांत और अंतर्मुक्ता, पांच विधियां, पहली इंटरमिटेंट साइलेंस, दूसरा पोस्ट सेवा साइलेंस, तीसरा योग का साइलेंस, चिंतन का साइलेंस और प्रकृति का साइलेंस। ये सारे चार पांचों प्रकार के साइलेंस को, मौन को, एकांत को अपने जीवन में अंदर धारण करना है। ओम शांति।
नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति।